ओम शांति। आप सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सर्वशक्तिवान, सर्व के दुख हरता, सुख करता परमात्मा पिता की प्यारी संतान, सर्व प्रभु प्रेमी आत्माएं, आज आप सबको इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में देख करके हमें बड़ी खुशी है कि आखिर वह दिन भी आया, बल्कि यह दिन तो अभी हमारे लिए आ ही चुके हैं, जबकि सर्व आत्माएं भिन्न भिन्न समय पर यहां आकर के अपने परम प्यारे परमात्मा पिता का परिचय पाकर और स्वयं को यह अनुभव करती है कि बरोबर जो बात मानते आए थे कि हम परमात्मा की संतान है ना, मानते हैं आप सभी मानते हैं, जो मानते हैं वो जरा संकेत करें। आपने यह जानकर आ पाए हैं, यह हमारा ईश्वरी विश्वविद्यालय है, जैसा नाम जरूर है ऐसा ही कार्य यहां होता है, ऐसे माना जाएगा ना, जैसा भी जहां जो भी नाम से जाना जाता है तो ये कौन सा स्थान है, ईश्वरी विश्वविद्यालय अर्थात एक तो जो विद्यालय विश्वविद्यालय ईश्वर पिता ने स्थापन किया, और दूसरी बात कि इस विश्वविद्यालय के अंदर स्थापन करता ईश्वर कौन है, कैसे आकर के अपना ये विद्यालय स्थापन किया है, और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा इस सृष्टि में कौन सा कार्य करा रही है, मैं पहले इस बात को जानना चाहती। आप सब जो आए हैं, आप लोगों में से जरूर पहले किन्होंने थोड़ा थोड़ा इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के बारे में कुछ सुना हुआ है अथवा कुछ बातें समझी हुई है, जिन्होंने कुछ सुना हुआ है कि ये कैसा स्थान है, वो जरा हाथ उठाना। मेजॉरिटी जानते हैं, क्योंकि जिनों के संपर्क से आए हैं हो सकता है उन स्थानों पर जाते रहते होंगे। तो यह ईश्वरी विश्वविद्यालय जहां हमें ईश्वर पिता की पहचान, अर्थात ये तो हम सब मानते हैं ईश्वर विश्व का रचता है, ठीक है बात, ठीक है, विश्व रचता ईश्वर कहो, परम पिता परमात्मा कहो, ऐसा पिता जो विश्व का रचता है वो कौन, विश्व कैसे रची और विश्व किस प्रकार से, उसके अंदर विश्व के क्या क्या नियम बने हुए हैं, किस प्रकार ये विश्व का कार्य बना हुआ है, इन सब बातों की जानकारी ईश्वर पिता के द्वारा जो हम बच्चों को मिली है, जिसके आधार पर वास्तव में जो हम सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा को मानती हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से हर एक परमात्मा को याद करते हैं, कोई दुख के समय याद करेंगे, कोई अपनी मनोकामना पूर्ण करने के समय याद करेंगे, कोई तो एक ऊंचा परमात्मा है उनको प्रेम से याद करेंगे, कभी कोई मन में अशांति है, कभी कोई बात की आवश्यकता है, कभी कोई मन की आश पूर्ण नहीं होती है, भिन्न भिन्न प्रकार से हम अपने परमात्मा पिता को याद करते रहते हैं, करते हैं ना, ऐसा है ना सभी का ये अनुभव। ये करते हुए भी ऐसा भी है कि जब हम प्रेम से श्रद्धा भाव से याद करते हैं तो कभी हमारी वो मनोकामना पूर्ण भी होती है, लेकिन पूर्ण होते भी मन की इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जाती, जो वास्तव में इच्छा ही मनुष्य को दुखी करती है। क्योंकि वैसे भी कहा जाता है जब तक इच्छाएं हैं तब तक कभी भी हमें तृप्ति अनुभव नहीं होंगी, इच्छाएं बढ़ती ही रहेंगी, जिस कारण कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या। वास्तव में इच्छा रखने से कोई संतुष्टता नहीं होती है, परंतु आज के जमाने में मनुष्य की जीवन ऐसी बन गई है। तो मैं उसी मुख्य बात पर आती हूँ कि इस हमारे ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर जो विद्यालय, जैसे आपको पहले भी बताया कि यह परमात्मा पिता के द्वारा स्थापन किया हुआ है, और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में पहली शिक्षा हम आत्माएं जो मानती है, हम एक ईश्वर पिता की संतान है। वास्तव में अगर साधारण रीति से माना जाए, अगर कोई बच्चा कहे मैं, मेरा ये बाप है, मैं फलाने बाप का बच्चा हूँ, और उससे पूछा जाए तो आपका बाप क्या करता है, कौन है, कहाँ रहता है, तो बच्चा बता देगा ना, बताएगा या नहीं। और अगर हमारे से पूछा जाए, जब हम कहते हैं हम परमात्मा पिता की संतान है, परमात्मा पिता के लिए हम सबको बड़ी ऊंची भावना है, क्योंकि जब हम प्रेम से उसको याद करते हैं, जब कोई अशांति है, जब कोई मन के अंदर ऐसी दुख की घड़ी आती है और हम प्रेम से भगवान को याद करते हैं, तो उस घड़ी के लिए हम अपने में शांति अनुभव करते हैं, जिससे हम मानते हैं शांति देने वाला तो वही परमात्मा पिता है। ऐसे बाप को जानना वास्तव में हम मनुष्य आत्मा का फर्ज है, अथवा हमारे लिए जरूरी है। परंतु दुनिया में आकर जब हमने इस शरीर को धारण करके सृष्टि मंच पर आए हैं, तो हमें पहली ये पहचान, जो हम मानते हैं हम भगवान की संतान हैं, परमात्मा की संतान मैं कौन, हर एक मानता है शरीर से काम कराने वाली, इस शरीर से बोलने वाली, देखने वाली, सुनने वाली, इसके अंदर वह आत्मा शक्ति है, आत्मा मैं हूं। पूछेंगे आप कौन है, कहेंगे मैं फलाना, जो आपका नाम है। और नाम तो हम जानते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो नाम नहीं होता, नाम पीछे पड़ता है, परंतु बच्चा तो है। अब वो जो मैं हूँ, नाम इस शरीर पर पड़ता है, पर शरीर को धारण करने वाली मैं आत्मा, जो इस शरीर की कर्म इंद्रियों से कर्म कराती हूँ, जो मैं बोलती हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, परमात्मा मेरा पिता है। हम अपने आत्मा अपने पिता को पहचाने। जब मेरा बाप शांति का सागर और मैं आत्मा दुख शांति अनुभव करूं, मेरा बाप दुख हरता सुख करता और मैं शरीर को धारण कर सृष्टि मंच पर आकर दुखी अनुभव करती रहूं, कारण कि मुख्य बात स्वयं को भी हम भूले हैं और अपने सर्वशक्तिवान परमात्मा पिता को भी भूल गए हैं। अब फिर से भगवान की महावाक्य, जब सब मनुष्य आत्माएं याद जरूर करते हैं, मानते हैं कि वो सर्व के दुख हरता है, उनसे कहते हैं हमें दुखों से मुक्त करो, गति सदगति मांगते हैं, परंतु गति भी कैसे होंगी? सदगति दाता बाप किस प्रकार से हमें गति सदगति देता है, इन सब बातों की जानकारी, क्यों ऊंचे ते ऊंचा भगवान, उनकी जानकारी भी ऊंचे ते ऊंची भगवान की हम कितनी महिमा गाते हैं, ऐसे ऊंचे ते ऊंचे बाप की जितनी ऊंची महिमा हम गाते हैं, ऐसे को जानना और जान करके मानना, मान करके जो उनकी शिक्षाएं हैं उन शिक्षाओं को जीवन में धारण करके चलना, ये भी तो कोई सिखाने और समझाने और कराने वाला चाहिए। आज की दुनिया को हम सब जानते हैं, तो परमात्मा पिता ने हमें यह सृष्टि की रचना, जो चार युगों में ये सृष्टि का चक्कर चलता है, उस युगों के अंदर आज का समय माना जाता है कौन सा है, सत्युग या कलयुग, स्वर्ग या नर्क, क्या कहेंगे हा? बोलो एक ही आवाज में, अभी है कलयुग का समय, बल्कि कलयुग की अंत। तो ये तो मानते होंगे भगवान के महावाक्य, जब धर्म की अति गिलानी है, हम सब जानते हैं हमारा भारत कभी स्वर्ग भूमि था, जिस कारण याद करते हैं स्वर्ग को आम रीति से, कोई बुजुर्ग शरीर छोड़ता है तो करते हैं स्वर्ग पधारा, वो तो उनके शुभ भावनाओं के अनुसार कह देते हैं, परंतु स्वर्ग कहाँ है कैसा है, स्वर्ग में वो ही जा सकता है जिसके श्रेष्ठ कर्म हो, जिसकी जीवन में कभी दुख का अनुभव न खुद करे न किसको दुख देवे। अब आज की दुनिया में है कोई ऐसा? तो परमात्मा पिता के द्वारा हमें ये नॉलेज मिली है, और जिस नॉलेज के आधार से, क्योंकि भगवान से ऊंचा कोई नहीं, ऊंचे ते ऊंचा भगवान, ऊंचा तेरा नाम है, ऊंचा तेरा धाम है, ऊंचे तेरे काम है, जिनका धाम ही ऊंचा है वहां हम पहुंचे भी कैसे और जाने कैसे। इसलिए भगवान के महावाक्य है, जब जब धर्म की अति गिलानी होती है, मैं गुप्त साधारण रूप में आकर के फिर से वही आदि सनातन सत्य धर्म की स्थापना का कार्य करता हूं। तो यह जैसे आपको पहले बताया कि हम सबको देश विदेश सारे विश्व के अंदर ये संदेश पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और यही संदेश कि अब ये जो सृष्टि का चक्कर सत्य त्रेता द्वापर कलयुग चार युग तो मानते हो ना, अभी तीनों युग पूरे हो गए, कलयुग भी अपने अंतिम चरण पर पहुंच गया है, हर एक मानता है। फिर भी कुछ समय पहले कुछ धर्म की रूप रेखा जीवन में नजर आती थी, परंतु अभी तो अधिक रीति से देखा जाए मनुष्यों के अंदर धर्म की मान्यता है, परंतु धर्म को मानते हुए धर्म युक्त कर्म, धर्म के लिए तो माना जाता है धर्त परिये धर्म न छोड़िए, सुना है ना, सुना है ना, कितना भी आपत्काल आ जाए परंतु धर्म को मानने वाला अपने धर्म को, धर्म अर्थात जीवन के अंदर ईश्वरी शिक्षाओं की धारणा और उन शिक्षाओं से जो जीवन में दिव्यता आती है, दैवी गुण जागृत होते हैं, जिसका गायन हम करते हैं, जो हमारे पूज्य देवताएं जिनके आगे जाकर के हम कहते हैं सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, विकार और निर्विकारता जानते हो ना, पांच विकारों को सब जानते हैं और मानते हैं कि ये बुरी चीज है, कोई कोई छोड़ना भी चाहते हैं पर छूट नहीं पाते हैं। ऐसी बात जिन बातों में आज हम फंस गए हैं, हमारे पूज्य देवताएं संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण थे, वे भी मनुष्य रूप में है, हम भी मनुष्य रूप में, तो ऐसी मनुष्य जीवन को देव समान बनाना ये एक सर्वशक्तिमान परमात्मा पिता का ही काम है। इस सृष्टि का परिवर्तन करना, अधर्म विनाश सत धर्म की स्थापना, परमात्मा आकर के सत धर्म फिर से स्थापन करते हैं, और जब सत धर्म स्थापन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली अधर्म विनाश हो ही जाता है। इसलिए अब फिर से जो सृष्टि का नियम सत्युग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग और कलयुग का अंत है, अंत के समय ही भगवान के महावाक्य है, जब अति धर्म को मानते हुए परंतु धर्म युक्त कर्म नहीं है, तो उनका और ये जो जाने भी और करे नहीं तो उसको और दोषी माना जाता है। अब देखो हम सब मानते हैं कि भगवान को मानना चाहिए, जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको जीवन में धारण करना जरूरी है, परंतु कर नहीं पाते हैं, क्यों का आज का संसार की हालत ऐसी है। अगर हम धर्म को माना, भगवान की शिक्षाओं को जीवन में धारण करके चले, समझते हैं चलना बड़ा मुश्किल है। एक तरफ हम मानते हैं सर्वशक्तिवान परमात्मा है, अगर सर्वशक्तिवान का हमें साथ है तो उनका साथ हमें कैसी भी आपत्काल से, अगर हमारे अंदर पूरी निश्चय है, विश्वास है, और विश्वास से हमारे जीवन में वो सत्यता और पवित्रता की धारणा है, तो परमात्मा से हमें वो शक्ति मिलती है जिससे हम आने वाली परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। परंतु हम अभी तो आपको इतना ही बताते हैं कि परमात्मा पिता के द्वारा हम स्वयं को आत्मा मानते हुए और आत्मा परमात्मा की मैं संतान हूँ, इस बात को थोड़ा अच्छी रीत समझ करके और मुझ आत्मा का परमात्मा के साथ कैसे मन और बुद्धि का योग जुटा रहे, यह विधि यहाँ सिखाई जाती है, जिसको सहज राज योग कहा जाता है। सहज है जब वो मेरा बाप है, बाप को याद करना, बाप की शिक्षाओं को जीवन में धारण करना बच्चे के लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम भी परम आत्मा की संतान आत्मा है। वास्तव में आत्मा भी सत्य है, आत्मा भी अविनाशी है। मुझ आत्मा के अंदर जो भी मेरे जीवन का पार्ट है वो समाया हुआ है, जो मैं बजा रहा हूँ यह अंदर में स्मृति रख करके, और उस स्मृति से अगर मैं पार्ट बजाऊ तो उस पार्ट में भगवान को याद करके बजाती रहूं, तो जो उनकी शिक्षाएं हैं उसको मैं जीवन में धारण करके स्वयं को चला सकती। क्योंकि अभी उसकी हमें पूरी नॉलेज किन कर्मों के आधार से हमारे श्रेष्ठ कर्म बनते हैं, कौन से कर्म ऐसे हैं जो हमारे से भ्रष्ट कर्म करा करके और हमें पाप का खाता हमारा बनाता है। इस समय पाप का खाता बढ़ जाने के कारण मनुष्य चाहते हुए भी परंतु कर नहीं पाते और इतना ही करते हैं। चलो जो कुछ हुआ हम भगवान को याद करते हैं और याद करने के समय मन स्थिर होता नहीं, जिस कारण वो शक्ति हम परमात्मा से ले नहीं सकते हैं। तो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर यह सहज राजयोग की शिक्षा, अर्थात हम परमात्मा पिता से योग, उनकी याद, योग माना ये नहीं कि हम कर्म इंद्रियों से हठ से दमन करके और उसको याद करें, वो याद हमारी कर्म इंद्रियों को दमन करने में लग जाती है, न कि परमात्मा की शक्ति को धारण करती है। तो परमात्मा पिता को हम कैसे स्वयं को आत्मा जान करके याद करें, जो शरीर में होते शरीर भान से हमारी बुद्धि उपराम रहे और परमात्मा पिता की स्मृति में ऐसी लग जाए जो हम उस स्मृति की शक्ति से अपने में परमात्म शक्ति का अनुभव करते जाएं और उनकी शिक्षाओं को धारण करने के लिए हमारी बुद्धि शुद्ध बनती जाए, जिस शुद्ध बुद्धि से परमात्म शिक्षा को धारण कर हम अपने जीवन में ऐसे कर्म करें जो जो कुछ भी हमारे से पूर्व कर्म हो चुके हैं उसके ऊपर वो हमारा पाप का खाता भस्म हो जाए और हमारा ये श्रेष्ठ कर्मों का खाता हमें फिर से ऐसी जीवन का अनुभव कराते जाए। तो ये कर्मों की गति का ज्ञान, स्वयं के आत्मा का सच्चा परिचय, परमात्मा पिता से मन और बुद्धि को एकाग्र करने की सहज विधि, जिससे हम शांति के सागर पिता से शांति का अनुभव करते रहें और उस शांति की शक्ति से हमारे अंदर सहन करने की शक्ति, धीरता की शक्ति, और सबसे पहली कि जो हमारी वृत्ति हम मानते हैं हम सब एक परमात्मा पिता की संतान है, परंतु उसी वृत्ति से उसी भावनाओं से हम एक दो को उसी नजर से देखें और ऐसा ही स्नेह संपन्न अपने में व्यवहार करते रहें, ऐसी शिक्षा धारण करते हम अपने जीवन में वह आध्यात्मिक शक्ति जागृत करके और जीवन के कर्मों में ऐसा ही श्रेष्ठ कर्म करने की शक्ति धारण करते हैं। इसीलिए हम चाहते हैं आप सब हमारे भाई बहने हमारी दृष्टि में एक तरफ तो हम सब एक परमात्मा पिता की संतान और इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में ईश्वरी पढ़ाई पढ़ने के लिए सहज राजयोग सीखने आए हैं, और साथ साथ ये हमारा ईश्वरी परिवार भी है। तो हमारी दृष्टि आप सबके तरफ, आप सब हमारे भाई और बहन, हम सब एक पिता की संतान, आपस में सब भाई बहन है, उसी स्नेह भरी दृष्टि से हम आपको देखते हैं। आपको ये 3 दिन यहाँ रहने से स्वयं भी अनुभव करेंगे। एक तरफ ये विश्वविद्यालय है जो दिन भर आपको हर सब्जेक्ट पर पूरी पूरी नॉलेज समझानी से स्पष्ट रीति से मिलेंगी और उसका अभ्यास कराया जाएगा, और साथ साथ रहना करना खाना पीना और आपस में स्नेह संपन्न व्यवहार जो आपको महसूस कराएगा कि बरोबर ये तो जैसे अपना ही परिवार है। तो ये हमारा परिवार भी है, आपका ये घर भी है, आप सब अपने बाप के घर में आए हैं, इसलिए आप सबको रहने का स्थान ठीक मिला है, सब ठीक रीति से खान पान सब ठीक सतोगुनी। और यहाँ आपको थोड़ा मन पर ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी ऐसा आपस में बातचीत, दुनिया की कोई बातें यहाँ आपस में नहीं करना। ये 3 दिन जो नॉलेज मिलती जाए, सवेरे सवेरे योग अभ्यास, वो आपको उसका मेथड भी बताया जाएगा, और उसके साथ सन्मुख में बैठ करके हम भी सामने बहने भाई भी करेंगे और आप भी करेंगे। तो ये एक साथ में वो बैठ के सिखाना और उसके लिए उसकी नॉलेज दे करके जो सुनते जाओ उस पर दिन भर मनन करते रहो, आपस में मिलो, वही चर्चाएं आपस में करो, तो जो सुना और उसी समय उसको समझते जाएंगे, समझ में आ गया तो फिर करना मुश्किल नहीं। तो हम कहेंगे आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं, अपने पिता के घर में आए हैं, ये आपका ईश्वरी परिवार है। अब ईश्वरी परिवार में आकर ईश्वरी स्नेह पा करके स्वयं को मैं आत्मा हूँ, इस शरीर को चलाने वाली मालिक हूँ, तो जो जो हमें शिक्षा मिलती जाए उसके अनुकूल हम अपनी विचारधारा बनाते जाएं और उन विचारों से हम अपने जीवन में चलते रहें। आप थोड़े ही दिन में महसूस करेंगे सचमुच ऐसे ही बिगर मेहनत के शांति अनुभव होती रहती है, आपस में मिलते प्रेम की महसूसता आती है, और अगर मन में याद है हम आत्माएं परमात्मा एक पिता की संतान भाई बहन है, तो वो भाई बहन का स्नेह का अनुभव हमें जीवन में बड़ी खुशी देगा। तो आप यहाँ आए हैं, जो जो बातें सुनो अच्छी रीत से सुनकर जीवन में धारण कर यहाँ से वो शक्ति प्राप्त करते जाना, मन को स्थिर करना। भले भक्ति में चलो भक्ति करते रहेंगे, कोई मंत्र लेंगे, कोई मूर्ति ध्यान पे रखेंगे, परंतु ये तो आपको अनुभव है, पूजा करते रहते हैं, मंत्र जपते रहते हैं, फिर मन इधर उधर भागता है। लेकिन अगर ये सहज राज योग एकाग्रता से वो सुन करके अभ्यास करेंगे तो उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, और दिन भर थोड़ा उस पर चिंतन रहेगा तो इसको अनुभव करना कोई मुश्किल नहीं है। तो जब इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में आप अपना समय निकाल करके आई है, तो मैं यही कहूंगी आप समय का पूरा फायदा लेकर, गीत ने भी कहा ना, शुद्ध संकल्पों का दीप जगाइए। आत्मा ज्योति स्वरूप है, अंदर में वो ज्योत जगती रहती है और उसमें जो संकल्पों की धारा है उसको हम शुद्ध बनाते जाएं। शुद्ध संकल्प क्या, वो जो जो आपको बताया जाए उसको फिर अंदर मनन करते, बार बार स्मरण करते और उसको मंथन करते रहेंगे तो शुद्ध संकल्प की स्मृति हमारे अंदर परमात्म याद की शक्ति जागृत करती जाएंगी, जिससे हम अपने मन बल मानते हैं, मन बड़ा चंचल है, कभी स्थिर नहीं हो सकता है, परंतु मन मुझ आत्मा की संकल्प शक्ति है, बुद्धि मुझ आत्मा की स्मृति की शक्ति है, सोचना समझना यथारथ अयथारथ की पहचान ये बुद्धि का काम है, ये मन और बुद्धि मुझ आत्मा की चेतन शक्तियां हैं, लेकिन इन शक्तियों वाली मैं चेतन आत्मा जो सर्वशक्तिवान परमात्मा की संतान हूँ, इस स्मृति को अपने में जागृत करते हुए और उसका अनुभव करते जाना, इसकी सारी नॉलेज, समय की पहचान, सृष्टि का चक्कर, कैसे स्वर्ग था अब फिर से स्वर्ग होने वाला है, ये निश्चित भावी है, क्योंकि सभी की पुकार है, ऐसा कलयुग ऐसी दुख की दुनिया कब तक चलेंगी। भगवान कहते हैं अभी इस सृष्टि की अंतिम अंतिम कलयुग के अंत का समय है, अंत में ही परमात्मा फिर से इसी की आद सतयुग जिसको स्वर्ग कहा जाता है फिर से स्थापना के लिए ये पहले तैयारी करा रहे हैं। हे मनुष्य आत्माएं जो देव समान थी फिर से देवता बन करके ऐसी जीवन बनाकर जब ये दुनिया बदल जाए तो यही आत्माएं देव स्वरूप में इस सृष्टि पर आकर के और अपने देवताई जीवन व्यतीत करे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको बहुत बहुत आने की मुबारक है और मैं यही आशा करूंगी कि जो कुछ आप सुने उसका पूरा फायदा लेके आगे के लिए अपनी जीवन में दिव्य गुणों को धारण करते हुए परमात्मा पिता से उस शक्ति को धारण कर अपनी जीवन को दिव्य बना के चलना, जिससे आपको सबसे बड़ा फायदा ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो जिनके द्वारा ही मनुष्य पाप कर्म करते हैं, उससे बड़ा सहज रीति से आप छूट करके और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे जिससे आपका पुण्य का खाता बनता जाएगा। ऐसी शिक्षा हमें परमात्मा पिता के द्वारा मिली है जो फिर हम आपको बता करके आपका संबंध पिता के साथ जुटे और उससे आप यह शक्ति धारण करके जीवन में अपने दैवी गुण धारण कर देवता स्वरूप बनकर फिर से स्वर्ग की दुनिया में आने का अधिकार प्राप्त कीजिए। चलेंगे स्वर्ग में, चलेंगे चलेंगे तो जब भगवान की उस स्वर्ग स्थापन करने वाले के साथ संबंध जुटाओ तो स्वर्ग तो अपना जन्म सिद्ध अधिकार है। ओम शांति शांति शांति।
दादी
अपनी 2 मिनट के लिए अच्छा
दादी जी, आप सबको भी इनका परिचय हम कराना चाहेंगे। ये करीब 125 भाई बहने आए हैं दादी जी, मुंबई से हैं, कुछ हरियाणा से, कुछ पंजाब से। तो जो भाई बहने हरियाणा से आए हैं, हांसी फतेहाबाद से, वे कृपया, अच्छा जो हांसी से आए हैं वे खड़े हो या हाथ उठाए,
कैसे?
ये सब हांसी से आए हैं दादी जी और उससे कनेक्टेड सेंटर से जो भी आए हैं, तो मेजोरिटी तो हांसी की दिखाई दे रही है। अच्छा अभी बैठ जाए। और जो फतेहाबाद से आए हैं वे जरा उठे, लगभग समान है। फतेहाबाद। और जो पंजाब नांगल से आए हैं ये बैठ जाए, पंजाब नांगल, हाँ
नांगल,
थोड़े से ही भाई बहने हैं बाकी। हाँ दादी आए हैं, अभी आप सभी बैठ जाएंगे। अभी दादी बाकी जो है सब मुंबई से हैं, मुंबई से भी अलग अलग स्थानों से हैं। जो गामदेवी से आए हैं, गामदेवी से कनेक्टेड सेंटर से, वे भाई बहने उठे। ये है दादी जी गामदेवी कनेक्शन वाले। टीचर कौन आई है? नेहा बहन आई है, सुनीता बहन, जागृति बहन। बैठ जाए। जो भाई बहने खार सेंटर से कनेक्टेड हैं, वे जरा उठे, खार बांद्रा से। शोभा बहन आइए, बैठ जाए। और जो भाई बहने घोड़तदेव से आए हैं, घोड़तदेव के कनेक्शन से, भाई खल्ला घोड़तदेव, मालती बहन आई है, बैठ जाए। और बाकी ऐसे भाई बहने जिनका किसी भी स्थान से कनेक्शन नहीं था लेकिन अलग स्थान से आए, वे खड़े हो जाए। इनके अलावा नहीं, मतलब इन इन स्थानों से जिनका नाम उठाया, इनके अलावा जो भाई बहने हैं
वो सब खड़े हो जाए,
वे सब खड़े हो जाए। वे भी हैं, कहाँ से हैं आप लोग? चेंबूर से हैं,
तो मुंबई हो गई।
हाँ मुंबई से, दादर। अच्छा गामदेवी का कनेक्शन ही है पूरा, ये वर्ली दादर एल्फिस्टन।
चलो अभी बिना बिना स्थान से, जिन भी स्थान से आए, सब यही समझे हम एक ही बाप के बच्चे, अभी एक ही स्थान पर अब सब ईश्वर के रचे हुए यज्ञ में बैठे हुए हैं, तो आप सब एक पिता को याद करके दो मिनट के लिए कंप्लीट और सब संकल्पों को किनारे करके, अभी तो यही संकल्प होगा जो सुना है, ये संकल्प कि हमें स्वर्ग में आना ही है, आना है, आना है स्वर्ग में, है हिम्मत, है हिम्मत। हाँ जरा डर रही है ऐसा लगता है। कोई जास्ती मेहनत नहीं है, केवल निश्चय, कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर जिस बात की हम दृढ़ता रखते हैं, केवल जो सुनते हैं, हर एक जानता है बुरा क्या है अच्छा क्या है, जब जानते हैं अच्छा समझ के अच्छा करना, बुरा समझ के बुरे को छोड़ना, ये केवल अपने दृढ़ता पर है। तो दृढ़ता की शक्ति, निश्चय का आधार भगवान पर निश्चय और उसकी पहचान, निश्चय से पहचान से उनकी शिक्षाओं को धारण करने की शक्ति जागृत होती है। तो अभी दो मिनट के लिए जो बाप की हम बच्चों को शिक्षा है, मैं इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी, इन प्रकृति के पांच तत्वों से न्यारी, इस प्रकृति की मालिक, मैं शुद्ध आत्मा हूं। मैं आत्मा इन आंखों के द्वारा देखने वाली इन कानों के द्वारा सुनने वाली इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म कराने वाली वास्तव में मैं आत्मा शुद्ध शांत स्वरूप हूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर परम आत्मा पिता की संतान। परमात्मा पिता प्रेम के सागर है, मैं आत्मा भी उनकी संतान प्रेम स्वरूप। मैं शांत स्वरूप आत्मा इन कर्म इंद्रियों की मालिक अपनी चेतन शक्ति मन अर्थात संकल्प शक्ति के द्वारा शुद्ध संकल्प द्वारा इन कर्म इंद्रियों से सदा शुद्ध और श्रेष्ठ कर्म कराती रहूं। मैं शुद्ध आत्मा सदा यह श्रेष्ठ संकल्प मैं दुख हरता सुख करता पिता की संतान सदा सर्व को सुख देने वाली न किसको दुख दूं न किससे दुख लूं। ऐसे स्वयं के अंदर शुद्ध संकल्प की धारा जागृत करते हुए बार बार अंदर यह स्मृति जागृत रखें इस शरीर की मालिक इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाली मैं शुद्ध आत्मा हूं। सर्वशक्तिवान सर्व के सुखदाता पिता की संतान। अंदर ही अंदर सुख्याम इस शुद्ध चिंतन को जागृत करते, शुद्ध संकल्प की ज्योत जगाते हुए आत्मरूपी ज्योति प्रकाशित होती जाएंगी और मैं प्रकाश स्वरूप आत्मा शांत स्वरूप शांति के सागर की संतान ऐसी स्मृति में स्थित हो जाए। शुद्धता एक बाप में की स्मृति स्वयं के सत्य स्वरूप के पहचान की खुशी शांति।